हालेलुया
हालेलुया
यीशु मसीह के लिए जरा जोरदार ताली। खुदावन खुदा जो था जो है जो आने वाला है उसके पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे साथ निकाले हैं अहदनामा में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील उसका 9 बाब उसकी 18वीं आयत से 20वीं आयत तक का ये वाक्या पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु के हक में पतरस ऐलान करता है और इश्तहार देता है कि वो कौन है। सो आए हम इस वाक्य को पढ़ें क्योंकि हम 3 बातें सीख रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में से। वो कौन कौन सी है जी? देखना, सीखना और अमल करना। सो आए यहाँ पर तवज्जो करेंगे इस वाक्य पर और यहाँ से अपनी रूहानी गुज़ा के लिए चंद एक बातें सीखेंगे। जब वो तन्हाई में दुआ कर रहा था और शागिर्द उसके पास थे तो ऐसा हुआ कि उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने जवाब में कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और बाज एलिया कहते हैं और बाज ये कि कदीम नबियों में से कोई जी उठा है। उसने उनसे कहा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने जवाब में कहा, खुदा का मसीह। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर ये वक्त आएगा कि हमें जो हम ईमान रखते हैं, जो फहम, जो मकाशफा, जो खिर्द खुदा ने हम पर जाहर किया है उसका हमें जवाब देना होगा। जब हम जबूर 23 को पढ़ते हैं तो दाऊद इस सच्चाई से वाकिफ है और वो इन जुमलों में इस सच्चाई को बयान करता है कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। इस जबूर को पढ़ते हुए हम सिर्फ उसको पढ़ने की हद तक ही ना पढ़ें कि ये जी के इत्मीनान का जबूर है, ये याद दिलाता है कि खुदा की तसल्ली हमारे साथ है या फिर दाऊद के साथ थी। जब जब हम उस जबूर को पढ़े क्या वो पहली आयत हमारी जिंदगी में हकीकत है जो दाऊद ने कही कि खुदावंद मेरा चुपान है। क्या जब हम उसे पढ़ते हैं वाकया यकीन करते हैं कि वो हमारा अयाली है, वो हमारा चुपान है, वो हमारा निगेबान है, वो हमारा वो सब कुछ है जो हम सबको मुहैया करता है। क्योंकि जबूर 23 दाऊद ने अपने बादशाही महल से नहीं लिखा या फिर वो अपने तमाम उन सिपाहियों से घिरा हुआ अपने तख्त पर बड़े सुकून से बैठे हुए इस बात को नहीं कहता कि अपनी शानो शौकत को देखकर, अपने तमाम फौज को देखकर, अपने तमाम इंतजाम को देखकर कहता है खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी नहीं होगी क्योंकि मेरे पास बहुत से सिपाही है, बहुत सा रुपया पैसा है, बहुत मेरी शानो शौकत हो चुकी है, बहुत मेरी मशहूरी हो चुकी है। जब उसने ये बात कही तो वो उस बियाबान में, वो उस इलाके में जहां पर उसका अपना बेटा अभी सलूम उसका पीछा कर रहा है, उसके अपने बहुत से लोग जो उसकी तरफ हैं वो दाऊद बादशाह के साथ चलते हैं और बहुत से जो अभी तक उससे नफरत करते हैं वो उसे मरवाना चाहते हैं। सो वो ना सिर्फ अपने बेटे से, ना सिर्फ उन लोगों से जो उसे मारना चाहते हैं, यहां तक के जब वो जात के इलाके में भागता फिर रहा है और वहां पर वो पहुंचता है और अपनी वो वजह को बदल लेता है, अपने मुंह से वो लारे निकालना शुरू कर देता है, कंबला रंबला हो जाता है और उस इलाके का बादशाह कहता है कि क्या पहले ही मेरी बादशाही में बहुत से ऐसे कमले नहीं, इसे जाने दो। और वो जात के इलाके में जहां के हीरो को, जो जाति जूलियट जाद का इलाका है वहां के लोग भी उससे नफरत करते हैं क्योंकि दाऊद ने उनके हीरो को क्या था जी, मारा था। तो मुख्तसर बताना चाहता हूं कि जब जबूर 23 की पहली आयत को हम पढ़ते हैं तो दाऊद ने सुकून, इत्मीनान, तसल्ली, शहंशाही महल में या फौज से गिरे हुए अपने तख्त पर बैठे बहुत सी नुकरानियां और नौकरों की चहल पहल में वो बात नहीं लिखी। वो कहता है खुदावंद मेरा छुपान है हर हालात में। वो इस सच से वाकिफ था। और यहां पर यीशु मसीह ने सवाल किया है, जब वो दोहाई में दुआ कर रहे हैं तो यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से पूछा है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो शिगिर्दों ने कहा, उन्होंने जवाब दिया, बाज कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, बाज कहते हैं एलिया, बाज कहते हैं कदीम नबियों में से कोई नबी है। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो हम सबको याद दिलाया गया है मलाकी किताब में कि इससे पहले कि खुदा का मसीह आए एलिया आएगा। फिर हेरोदीस का वाक्या पढ़ते हैं पिछले ही बाब में, वो इस बात से घबराया हुआ था कि क्या यूहन्ना जिसको मैंने कत्ल करवाया है वो मुर्दों में से तो जी उठा नहीं। फिर एलिया के लिए वो क्यों कहते हैं कि एलिया या कदीम नबियों में से है। जब हम इस्तिस्ना की किताब को देखते हैं तो इस्तिस्ना 18वें बाब में मूसा ने नबूवत करके कहा था कि खुदा हमारे भाइयों में से एक नबी को क्या करेगा जी, भरपा करेगा, जो अपने लोगों के लिए क्या करेगा जी, रहनुमाई और हिफाजत और छुटकारा और खुदा की आवाज होगा। तो तमाम के तमाम लोग जिस फ्रेम में, जिस सोच में, जिस हद तक वो देख सकते थे, जिस फहम में वो समझ सकते थे, उन्होंने कहा यूहन्ना, यर्मिया, एलिया या कदीम नबियों में से कोई नबी। तो यीशु के शिगिर्दों ने जवाब दिया कि ये लोग कहते हैं, और वो वक्त आ गया जो वक्त उन्होंने यीशु के साथ गुजारा था। और यीशु यहां पर जैसे ठीक दाऊद जब दुख की चक्की में पिस रहा है, दाऊद जब अपने मुखालफों से घिरा हुआ है, जब जिसको उन्होंने सुना था जो जात का पहलवान जाति जूलियट 40 दिन 40 रात पर रात से इसराइलियों पर ललकार रहा था, उन पर नाजिश कर रहा था, उनको बुरा भला कह रहा था, वो क्या है जी, उनके सामने भी हकीर जाना जाता है क्योंकि उनके हीरो को, उनके पहलवान को उसने मात दी थी, कत्ल किया था और खुदा ने उसे फतह बख्शी थी। तो दाऊद इन तमाम हालात में गिरे हुए कहता है खुदावंद मेरा छुपान है। क्या हम जब तनख्वाह मिलती है तब कहते हैं खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कमी ना होगी? क्या जब हमारा नंबर लगता है कब हम कहते हैं खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कमी ना होगी? कब हम कहते हैं? जब जब हम बुरे हालात में गिरे होते हैं तब ये कलाम हमारे लिए तसल्ली का बाज बनता है कि किसी ने ऐसा भरोसा किया अपने तमाम हालात में, और वो कहता है बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। तो वो सवाल यीशु मसीह ने शिगिर्दों से कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? अगर लोग हमसे पूछें कि यीशु मसीह, बहुत से मुस्लिम लोग कहते हैं कि वो खुदा का बेटा नहीं, क्या जवाब है? हिंदू कहते हैं कि वो बहुत से खुदाओं में से एक और खुदा है, क्या जवाब है? बुद्ध मजहब कहते हैं कि जी ना जिंदगी है ना जिंदगी के बाद कोई मौत है, सब रूहें आसमान में और खाक और कायनात का हिस्सा बन जाती हैं, क्या जवाब है? क्या है जवाब उन ना अमीद लोगों के लिए जिनको अमीद ही नहीं कि मुर्दों की क्यामत होती है, जिनको पता ही नहीं कि कोई है जो पैदा हुआ और जमीन पर जिंदगी बसर की, मसलूब किया गया, दफन किया गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और फरिश्तगान की गवाही और 500 से ज्यादा और लाखों और अरबों करोड़ों पर अब तक जाहिर हो चुका है, कौन उसके बारे में बताएगा? ہماری عقل کی آنکھیں کس حد تک روشن ہیں؟ تو شاگردوں سے پوچھا، لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اگر یہی سوال ہم سے کوئی پوچھے کہ ہم یسوع کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ کیا کہیں گے؟ یسوع آپ کے لیے کون ہے؟ یسوع میرے لیے نجات دہندہ ہے. آپ کے لیے کون ہے تنویر؟ خداوند کا بیٹا، خدا کا بیٹا. آپ کے لیے کیا ہے؟ ہمارا جواب تیار ہونا چاہیے، ہمارا خداوند خدا. یہاں پر پترس نے یہی جواب دیا کہ خدا کا مسیح. اور جب ہم متی کی انجیل میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر اور مزید وضاحت سے خداوند کا بندہ متی رسول اس بات کو لکھتے ہوئے کہتا ہے، جب ہم اس کی 20ویں آیت سے متی کی انجیل اس کا 16 باب جب پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں خداوند کا کلام کیا کہتا ہے. 13ویں آیت میں لکھا ہے، 16 باب 13ویں آیت میں، جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا، بعض ایلیا، بعض یرمیا، یا نبیوں میں سے کوئی نبی. اس نے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پترس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. داؤد کہتا ہے، خداوند میرا چوپان ہے. موسیٰ کہتا ہے کہ وہ نبیوں میں سے ایک نبی کو بھرپا کرے گا. ایوب کہتا ہے، میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. یسعیاہ کہتا ہے کہ وہ کنواری سے پیدا ہونے والا ایمانوئل ہے. متی اسے کہتا ہے وہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. مرقس اسے کہتا ہے کہ وہ ابن آدم ہے. لوکا اسے کہتا ہے کہ وہ مرقس اسے کہتا ہے کہ وہ خدا کا خادم ہے. لوکا اسے کہتا ہے کہ وہ ابن آدم ہے. یوحنا اسے کہتا ہے وہ خدا کا بیٹا ہے. رسولوں کے امام اسے کہتے ہیں وہ جو مردوں میں سے جی اٹھا، جس کے بارے میں کہا گیا تھا وہ زندہ مسیح ہے. اور پھر رومیوں کا مصنف پالوس اسے کہتا ہے کہ وہ نجات دینے والا اور گمراہی سے نکالنے اور ہر طرح کی بیماریوں اور گناہ کی قید سے چھڑانے والا، رہائی دینے والا ہے. ان سب پر جس حد تک مکاشفہ ظاہر ہوا، ان سب نے جواب دیا. اب ہم سے اگر لوگ پوچھیں گے تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اور یسوع مسیح نے پترس سے کہا، یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون سے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی. ہم پر یسوع مسیح کس طرح ظاہر ہوا ہے؟ ہمارے ایمان کی اس کسوٹی پر، جسے کسوٹی کہتے ہیں، کس طرح ہم پیسے گئے ہیں، رگڑے گئے ہیں، کس حالات میں سے ہم گزرے ہیں کہ ہم اس کے پاس آئے ہیں. دکن کی ملکہ کا واقعہ ہم نے پڑھا ہے، وہ سلیمان کی حکمت کے بعد کس کی حکمت کو سننے کو آتی ہے؟ خداوند خدا کی. حبشی خواجہ آتا ہے پرستش کرنے کے لیے، اس کا فہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں تھوڑا سا ہے، کہ نبی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ کوئی ذبح ہوگا برے کی طرح. اسے فہم نہیں. فلپس خدا کے روح کی رہنمائی میں جا کر اسے بتاتا ہے کہ جس کے بارے میں تو پڑھتا ہے اس کا نام یسوع خداوند مسیح ہے. اور وہ اسے جانتا اور جا کر اپنے تمام حبشیوں کے علاقے میں کیا کرتا ہے؟ گواہی دیتا ہے کہ مجھے وہ مل گیا ہے جس کے بارے میں انبیاء اصغر اور اکبر نے کہا تھا. تو ہم پر وہ کس طرح ظاہر ہوا ہے؟ ہم پر کس طرح اسے ظاہر کیا گیا ہے؟ ہم نے کس حد تک اسے پہچانا ہے؟ हमारी आंखें किस हद तक खुली है मरियम की तरह कि वो कब्रिस्तान में है और यीशु मुर्दों में से जी उठा है और कहती है कि बागबान अगर तूने मेरे मसीह को कहीं पर रखा है तो मुझे बता दे। और जब यीशु से कहता है मरियम मरियम और वो उसको पहचान जाती है और वो कहती है रब्बी उस्ताद खुदावन। यहां पर खुदावन यीशु मसीह ये सवाल अपने शिगिर्दों से कहता है कि तुम मुझे क्या कहते हो। एक ने दलेरी से जवाब दिया मसीह का खुदा का मसीह जिंदा खुदा का बेटा। आज इस बात पर हमें सोचने की जरूरत है कि अगर हमसे कोई गैर कौम पूछे तो हम उसे क्या कहेंगे, हमारा जवाब क्या होगा, हम किस तरह उसका इश्तहार देंगे जैसे यर्मिया जैसे यसाया ने इश्तहार दिया, नूर का इश्तहार, हमारा इश्तहार क्या होगा। और हमें शख्सी तौर पर उसे जानने की जरूरत है। जब हमारा शख्सी तल्लक उसके साथ होगा तो फिर हम सिर्फ दाऊद के साथ पढ़ने वाले नहीं बनेंगे बल्कि कहने वाले बनेंगे कि हाँ वो दाऊद का चुपान है वो मेरा चुपान है। और कोई देखकर कहने वाला बनेगा कि मैं तारक के चुपान पर ईमान रखूंगा, मैं बल्कीस के खुदा पर ईमान रखूंगी, मैं हमेरा के खुदा पर यकीन करूंगा, मैं तनवीर के खुदा पर भरोसा करूंगा, मैं पादरी फैसल के खुदा को जानना चाहती हूं चाहता हूं, ठीक जैसे यशुआ कालब और दूसरे जसूस यरूकी शहर में जाते हैं और जब वहां पर जा रहे हैं वो पहुंच गए हैं और उनको पता चल गया कि यहां पर इसराइली जसूस आए हैं जो उनके शहर पर हमला करना चाहते हैं। तो क्या हुआ, वहां पर एक फाशा औरत जिसे राखब कहा गया है वो क्या करती है, उस जगह पर उनको अपने घर में छुपाती है क्योंकि वो जानती थी सुना हुआ था कि इसराइल का खुदा क्या हुआ है, फाते हुआ है और उसने कैसे कैसे अजीब काम किए हैं मिस्र में उनके वसीला से जिसका नाम मूसा है कि मूसा का खुदा क्या आया है जी, गालिब आया है। हमें भी इसी तरह जाने जाने की जरूरत है, जाना पहचाना जाना है कि हमारा ईमान हमारा भरोसा किस हद तक हम अपने मसीह को जानते हैं। इसीलिए मैंने ये मुतालिया शुरू किया है, देखना कि हम मसीह को कैसे देखते हैं, सीखना हमने किस हद तक किस गहराई तक किस लंबाई किस चौड़ाई किस हद तक उसे जांचा है परखा है समझा है एतमाद किया है भरोसा किया है। और अमल करना, देखना सीखना अमल करना ये हम सब के लिए है ताकि हम अपने मसीह को जाने सिर्फ इस हद तक नहीं कि वो कवारी से पैदा हुआ और हम उसका जन्मदिन मनाते हैं बल्कि इससे कहीं और ज्यादा। पौलुस रसूल इस बात को कहता मेरे साथ देखे इफिसियों 3 उसकी जब हम गालबन 17 और 18 आयत को देखते हैं तो वहां पर पौलुस रसूल इस बात को वो चाहता है कि हर एक ईमानदार इस सच से वाकिफ हो और वो क्या कहता है 14 आयत से आपके लिए पढ़ता हूं। वो मसीह की मोहब्बत के बारे में बात करता है, इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है। आसमान पर जितने खानदान हैं फरिश्तों के जितने कह सकते हैं कि ग्रोह उन सब का बनाने वाला कौन है, कादर मुतलक यहोवा यीशु नासरी। आसमान पर जितने 12 कबीलों के लोग हैं उन सब के नाम के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है, यहोवा। हम सब जो जमीनी हैं, हमारी पहचान क्या है, हमारा लास्ट नाम क्या आता है शनाख्ती कार्ड पर? लतीफ मसीह। यहां पर वो कहता है कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सकूनत करे, ताकि तुम मसीह में जड़ पकड़कर और बुनियाद कायम करके सब मकसों समेत बाखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, हमने कितनी हद तक यीशु को जाना है। हमारा रिश्ता उसके साथ कितना गहरा है, हमारा रिश्ता उसके साथ कितना नजदीकी है। क्या हम में चलते फिरते मसीह को लोग देखते हैं, या फिर चलते फिरते गिरजे में और गिरजे से बाहर और? जैसे अफसोस से कहना पड़ता है, बहुत से गैर कौम कहते हैं फादर, पुलपट पर खड़े होकर वाइट चोगा पहन लिया तो वो पाक हो गए, और जैसे ही पुलपट से उतरे चोगा उतार दिया और हर तरह के नकम्मे काम। पादरी, कलीसिया, किस हद तक लोग हम में मसीह को देखते हैं? और आगे क्या लिखा है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी से मामूर हो जाओ। उसकी गहराई, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई मौजूद है, हमें कदम बढ़ाना होगा कि जांचें, समझें, पहचानें। मसीह को 2000 साल जाने का मकसद इस जमीन को छोड़ने का एक ही था, कि ताकि वो हमारे वसीला से दुनिया पर जाहिर करे। तो पत्रस कहता है कि तू जिंदा खुदा का मसीह है। हमसे कोई सवाल करेगा तो ये जवाब आपका होना चाहिए, मैं अपना जवाब आपके मुंह में कभी नहीं डालूंगा, कि आप ये कहना, ये आपके और आपके रिश्ता जो खुदा के साथ है उसके दरमियान है, कि आप कह सके जैसे दाऊद ने कहा कि वो मेरा चुपान है, जैसे अय्यूब ने कहा कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। क्या हम उससे सुख पाएं और दुख ना पाएं? और यशायाह के साथ मिलकर कहने वाले बने, जैसे वो कहता है कि जो खुदावंद का इंतजार करते हैं वो अकाबों की मानद असरे नौ जमा होंगे, वो बालों पर से उड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वो दौड़ेंगे और मांदा नहीं होंगे, उनकी कुवत नहीं होती जाएगी, क्योंकि उनका तवक्कल किस पर है जी? खुदावंद पर। यर्मिया कहता है कि तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। उसका तजर्बा खुदा के साथ कि वो कैद खाना में खड़ा हुआ, उस कैद खाना में जहां पर आज के कैद खाना से अलहदा था, उसे कुएं में डाला गया कि वो वहां पर रहे। तो हम सबको अपनी अपनी जिंदगी में देखना होगा कि हमने किस लहद पर, किस चौड़ाई पर, किन लंबाई पर खुदा अपने खुदा को जाना है। और ये जवाब आपका होगा, और ये जवाब आपका होगा रूह कुद्दस के वसीला से होगा, रूह कुद्दस के साथ हमारे तल्लक से होगा। सो आए हम खुदावंद अपने खुदा के हुजूर झुकें और इस बात पर सोचें कि अगर हमसे यहाँ से बाहर जाते ही कोई पूछे, अगर हम अपने आप से ये सवाल पूछें कि मसीह मेरे लिए कौन है, क्या है, कैसा है, मैं उसे कैसे बयान करूंगी, करूंगा, क्या मेरा जवाब होगा, तो मेरा ईमान है कि पाक रूह आप सबकी हदायत और रहनुमाई करेगा। खुदावंद आज का कलाम हम सब के लिए बाय से برکت رہنمائی اور خدام خدا نصیحت کا وسیلہ ٹھہرے، تاکہ ہم تجھے اور شخصی طور پر جانیں، اور گہرے طور پر جانیں۔ موسیٰ جس حد تک تجھے جانتا تھا اس سے کہیں اور زیادہ جاننے کی خدام خدا تیرے ساتھ ہماری لگن اور محبت ہو۔ یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتا ہوں۔